भरे ही पड़े है ना, यह राम वह राम क्या क्या राम सब भरे पड़े। कौवा लोगों के लिए भगवान ने धूर्त भेज दिया है, लेकिन परमहंसों के आराध्य तो भगवान कृष्ण है। इसी तरह के अनेक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति, महान व्यक्ति सब कृष्ण को अपना माने, अपना इष्टदेव माने, गिनती नहीं है उसकी। जितना भी आप मिलाएंगे, सृष्टि के शुरू से ब्रह्मा जी कृष्ण के भक्त हैं, नारद जी कृष्ण के भक्त हैं, वेदव्यास देव कृष्ण के भक्त हैं, सबसे परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के भक्त हैं, सुध गोस्वामी कृष्ण के भक्त, और विश्व में सनातन धर्म को प्रचारित करने वाले सबसे बड़े परमहंस श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त है ना। इससे कृष्ण को समझा जा सकता है कृष्ण क्या है वास्तव में। क्या बात है कि ये बड़े बड़े लोग कृष्ण का भक्त हो रहे हैं। तो कृष्ण की योजना है कि भक्ति का प्रचार होना चाहिए संसार में, इसीलिए वे ऐसी लीला करते हैं कि पहले बड़े बड़े लोग पकड़ में आ जाए। भले जो मुनि हैं, परमहंस हैं, अमलात्मा है, उनसे भक्ति जोगम कारयितुम अवतीर्णम इत्यर्थ सुदर्शन जी का, उनसे भक्ति कराने के लिए ऐसी लीला करते हैं। कैसी लीला? अपने भक्तों के साथ परबस जो लीला करते हैं, तो परमहंस महामुनि सोचते वो हो भगवान हमारे अपने हैं, हम क्यों नहीं उनका परिकर हो जाते हैं, हम तो व्यर्थ इधर निराकार वाद में पड़े हुए हैं, इस वाद में उस वाद में इस मत में उस मत में, सबको छोड़ छाड़ करके कृष्ण की शरण लेते। तो यह रहस्य उद्घाटन माता कुंती के द्वारा हो रहा है। ऐसे और जगह भी ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन छिपा करके कही गई, और कुंती महारानी ने खोल दिया, इस बात को एकदम खोल करके कह दिया कि कृष्ण का अवतार होता है, ये सब लीला करते हैं परमहंसों को, मुनियों को, अमलात्माओं को अपना दास बनाने के लिए। और तब उनके देखा देखी संसार के लोग जिज्ञासु होते, भाई क्या विशेषता है कि जो संसार के किसी रूप में आसक्त नहीं हुआ वो इस नंद नंदन के रूप में क्यों आसक्त हो गया? इसका अर्थ है कि ये रूप कोई प्राकृत नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण ही पर्याप्त है। दुनिया का कोई शब्द नहीं बोलने वाला व्यक्ति किसी रूप में आसक्त नहीं होने वाला, और क्यों भागवत में इतना आसक्त हुआ, कृष्ण में क्यों आसक्त हुआ? यह बहुत सुंदर शब्द है, भक्ति योग विधानार्थ। भगवान परमहंसों को खींचने के लिए ऐसी लीला करते हैं, नहीं तो इस जगत में आकर के लीला प्रकाशित करने का अर्थ क्या होगा? वो तो नित्य लीला करते ही रहते हैं, सभी जीवों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन उसमें पहले वे चाहते हैं परमहंसों को। और ऐसे परमहंस उद्घोषणा करते हैं। एक बार मधुसूदन सरस्वती जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सार क्या है, तत्व क्या है? भगवान कृष्ण के भक्त हो गए और रोते रहते थे, तो उनके शिष्यों ने एक दिन ऊब करके पूछा कि अब आप सही सही बताइए तत्व क्या है, आप क्यों इस तरह कृष्ण भक्ति में? तो उन्होंने उनके सामने एक श्लोक कहा, वंशी विभूषित करा नवनीर दा भात पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। मैं कृष्ण को छोड़कर के और कोई परम तत्व नहीं जानता। कैसा कृष्ण? बंसी विभूषित करात, जिनका कर जिनका हाथ बंसी से विभूषित है, उनके अलावा मैं कोई परम तत्व नहीं जानता। बंसी विभूषित करात और नवनीर दाभात, जिनके शरीर का सौंदर्य नव नीरद के समान श्याम वर्ण है, और ये सन्यासियों के परम गुरु थे मधुसूदन सरस्वती, बनारस में रहते थे, सबके गुरु थे, लेकिन जो बंसी वाले ने फेर में डाल दिया तो इस तरह से बोल रहे हैं। नवनीर दाभा पीताम्बरात, जिनका अंबर जिनका वस्त्र पीला है, उनके अलावा मैं और किसी परम तत्व को नहीं जानता। अरुण बिंब फलाधरोष्ठा, और जिनके ओठ लाल लाल बिंद फल के समान है उनके अलावा मैं परम तत्व और किस कहीं नहीं जानता। फला भरोष्ठा और कैसे है पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात, जिनका मुख है पूर्ण चंद्रमा के समान जगमग करता है, उनके अलावा मैं परम तत्व और किसी को नहीं जानता। अरविंद नेत्रात, और जिनके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर है, तस्मात कृष्णा परम तत्व किमपि अहम न जाने, ऐसे कृष्ण से परम तत्व मैं और कुछ नहीं जानता, न जाने मैं नहीं जानता। और कितने लोग तो उनको ये कहना चालू कर दिए कि गुरु जी पागल हो गए। बनारस के सन्यासी ये प्रचार करते थे कि मधुसूदन सरस्वती पागल हो गए, लेकिन बदले नहीं, पागल रहे तो पागल ही रह गए जीवन भर। इसके बाद वो वृंदावन आए, वृंदावन में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। हाँ, दर्शन होने के बाद वो बनारस गए थे, तब उन लोगों ने पूछा कि ये क्या हो गया है, आप तो पहले निर्विशेष ब्रह्म की बात करते थे, सिखाते थे, वेदांत पढ़ाते थे। तब उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के अलावा कोई परम तत्व तो नहीं जानता। छोड़ दीजिए थर्ड क्लास फोर्थ क्लास टेंथ क्लास के जितने दुष्ट हैं गधे हैं, सब दूसरे के भक्त हो जाए, बाकी परमहंस महामुनीन्द्र अमलात्मा सब कृष्ण के भक्त। कुंती महारानी कह रही यह कह करके कहती है कथम पश्यम ही स्त्री, स्त्री बहुवचन बोल रही है, हम स्त्रियां भला कैसे इस बात को समझ सकती है। अरे क्या समझना बाकी रह गया बुआ जी, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया, सब तो खोल करके रख दे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में दैन्य विभूषण है। कुंती महारानी सर्वश्रेष्ठ महिला है, भगवान की बुआ है, देवकी की भाभी है, वसुदेव जी की बहन है, पांच महान पांडवों की जननी है, राजर्षि की पत्नी थी और पूरे विश्व का सम्राट युधिष्ठिर इनका पुत्र था, लेकिन फिर भी इतनी उन्नत महिला कह रहे हम स्त्री हैं हम नहीं जानती। यह है दैन्य वास्तव, सब कुछ जानती है, कहते हम कैसे जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके रिपोर्ट में कथा में लिखते हैं कि स्त्रियों में इस तरह का दैन्य देखा जाता है, पुरुषों में घमंड होता है। कोई पुरुष थोड़े कहेगा कि हम नहीं जानते हैं कृष्ण के विषय में, बल्कि पुरुष कहते हम ही भगवान हैं, है ना। शायद अब तक किसी स्त्री ने यह नहीं कहा होगा कि हम भगवान हैं, ना कोई है ऐसी किसी ने नहीं कहा होगा। जितना पंथ मत चला है सब पुरुषों ने चलाया, कंडम पंथ, स्त्रियों में सहज समर्पण होता है, समर्पण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं देखा जाता है कि जहां भी कोई धार्मिक गोष्ठी होती है तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, श्रद्धा होती है, दैन्य होता है। कुंती महारानी का यह वाक्य उनका भूषण है, जब कहते हैं कथम पश्चिम, हम कैसे देख सकती हैं आपको कि आप क्या क्यों ऐसी लीला करते हैं, यह कह करके कहती है कि परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, अमलात्माओं के लिए आप ऐसी लीला करते हैं उनसे भक्ति करवाने के लिए, लेकिन हम कैसे इस बात को जान सकते हैं। मैं तो केवल आपको नमस्कार करना जानती हूं, सबसे पहले कृष्ण कहकर नमस्कार करती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण आपको नमस्कार है, कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषि भूवाचक शब्द रच निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्णेत्यभि तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्णत्यभिधीयते, इस प्रकार है। कृषि शब्द का अर्थ होता है भू, भू माने आश्रय आधार,
र जो शब्द है वो निवृत्ति वाचक है, आनंद का वाचक है। तो इन दोनों को मिला करके इसका अर्थ है आनंद घन पर ब्रह्म, कृष्ण का अर्थ होता है आनंद घन। इसलिए जीव गोस्वामी जी इसकी टीका में लिखते हैं कि चाहे आप जो भी हो, भले अमलात्मा मुनि जन भी आपको ना समझ पाए या मूढ़ दृष्टि वाले लोग ना समझ पाए जो कुछ है, लेकिन आप मेरे नेत्र को बहुत सुख दे रहे हो, मत नेत्र सुख दोषी, आप आनंद घन है, कृष्ण है। और कृष्ण का नाम भी कृष्ण था प्रकट लीला में, कृष्ण का अर्थ है परमानंद घन। तो हे कृष्ण, हे परम सुखद, हे आनंद घन, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। और वासुदेवाय, हे वसुदेव पुत्र, आपको मैं नमस्कार कर रही हूं। इसके द्वारा कुंती महारानी कृष्ण के साथ अपना संबंध व्यक्त कर रही है। कृष्ण के ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन उनके जो नाम भक्तों के नाम से संबंधित होते हैं उनको बहुत प्रिय लगते हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ है वसुदेव जी का पुत्र, और वसुदेव जी की सहोदरी बहन है। तो वासुदेवाय का अर्थ है हे हमारे भतीजे, आपको मैं प्रणाम कर रहे हूं। यही भाव छिपा और बारंबार कुंती महारानी वसुदेव जी के भाग्य की सराहना की है। पहले भी कई जगह भागवत में, आगे आएगा दशम स्कंध में, जब कहती हैं कि वसुदेव जी परम भाग्यशाली हैं, ये हैं वो हैं ऐसे हैं, क्योंकि भगवान का नाम हुआ वासुदेव, वसुदेव जी उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किए। तो इस संसार में हम देखते हैं किसी व्यक्ति का संबंध कई लोगों से होता है, लेकिन पिता के साथ ऐसा संबंध होता है कि सिर्फ पग पग में उस संबंध को लिखना पड़ता है, स्मृति आती है फादर स्नेम। बिना फादर के संबंध के वो टाइटल पूरा नहीं, परिचय पूरा नहीं होता है ना। तो पासपोर्ट में भी फादर का नाम चाहिए और कहीं भी फादर स्नेम, पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम। भगवान भी जब आते होंगे इस जगत में, जब उन्हें जरूरत पड़ती होगी तो फादर्स नाम लिखते हैं, है कि नहीं? वसुदेव, उस व्यक्ति का कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान जिसे पिता श्री कहें, चरण छुए, वंदना करें और सब जगह कहें मैं उनका पुत्र हूं, तो कितना यशस्वी व्यक्ति वो है जिसका वो पुत्र बने। इसको सरस्वती और शेष नाग भी कहकर खत्म नहीं कर सकते, उसके भाग्य की बड़ाई पूरा नहीं कर सकते। तो वासुदेव शब्द के द्वारा वसुदेव जी के भाग्य की बात कही जा रही है। भगवान ने कहा वदन्ति वासुदेव इति वसुदेव सुतम हिमा, मुचकुंद महाराज से भगवान ने कहा कि मुझे लोग वासुदेव कहते हैं क्योंकि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। आज के लोग लिखते हैं पासपोर्ट पर नाम, तो अपने पिता का नाम लिखते, अपना नाम अपने पिता का नाम लिखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम ऐसा है कि एक ही नाम में दोनों नाम समा गया। वासुदेव के भीतर ही कृष्ण का भी नाम है और वसुदेव जी का भी नाम। वासुदेव जी का, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी का पुत्र, तो पिता का नाम हो गया और प्लस वासुदेव कृष्ण का नाम, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप उसमें समाया हुआ, बहुत कनेक्शन। वसुदेव जी ने और देवकी जी ने बहुत बड़ा तप किया था कृष्ण को अपना पुत्र पाने के लिए, सारा भोग छोड़ करके, और तब भगवान पुत्र बने। तो वसुदेव जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के आप उनके पुत्र के रूप में बने हुए हैं, धन्य हैं हमारे भाई जिनके आप पुत्र बने हुए हैं। तो ऐसे वसुदेव पुत्र को मैं नमस्कार करती हूं। अब इसके द्वारा वसुदेव जी के साथ होने वाली भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का द्वार उद्घाटन कर रही, तो किसी विशाल भवन का द्वार खोला जाए तो उसमें बहुत से रत्न मिलेंगे। तो यह नाम है वसुदेव जी की भक्ति का रहस्य उद्घाटन कर रहा है। अच्छा, इसके बाद भी चक्रवर्ती पाद जी के अनुसार मैं अर्थ कर रहा हूं। कुंती महारानी कहते हैं कि हमारे भैया निश्चित भाग्यशाली हैं, उनके भाग्य की सीमा नहीं है, लेकिन निश्चित है उनसे भी अधिक भाग्यवती मेरी भाभी देवकी है। देवकी नंदना है चा, क्योंकि उसके उदर में आप रहे। देवकी को परम भाग्यवती कह रहे, देवकी नंदना है चा। हे देवकी को आनंद देने वाले, हे देवकी के पुत्र, आपको मैं नमस्कार करती हूं। इतना निकट वर्णन, एक बार वर्णन कर रही हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम आद्यम पुरुषम ईश्वरम प्रकृते परम। यह भगवान का वर्णन है परमेश्वर के रूप में, और एक प्रकार देखिए उनकी मधुर लीला का वर्णन करें। देवकी नंदना है चा, देवकी के पुत्र को मैं नमस्कार करती हूं। जितना भगवान का आदि पुरुष होना सत्य है, उसी तरह से नित्य सत्य है उनका देवकी का पुत्रत्व। वो नित्य ही देवकी के पुत्र हैं, और उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष बलवान होता है। शुरू में जो ऐश्वर्य का वर्णन की, उससे ज्यादा बलवान भगवान का माधुर्य। वे आदि पुरुष हैं, सबको उन्होंने उत्पन्न किया है, लेकिन उनको जन्म दिया है मां देवकी ने, तो यह लीला ज्यादा महत्वपूर्ण। देवकी के उदर में भगवान रहे, कंस भी गया था देखने के लिए और समझ गया कि इसके उदर में भगवान है, और सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और जी और शिव जी के साथ आकर के माता देवकी को कहा था, हे मां अंब दिष्टे मते कुक्ष गत कर, हे मां तुम्हारे उदर में भगवान आए हैं। अंब कहा था, और जब भगवान की मां है तो ब्रह्मा शिव की क्यों नहीं मां होगी, तो हम सबकी मां है, तो आपके उदर में भगवान आए हैं। अब आप डरिए मत कि कंस इसको मारेगा, अन्य पुत्रों को जैसे मार दिया वैसे आपके इस पुत्र को मार नहीं पाएगा, अब वो मरने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। देवता लोग जेल में आकर के माता को आश्वासन दे रहे थे, तो देवकी ने भगवान को गर्भ में धारण किया, और जहां जाते हैं भगवान उनका नाम होता है, माता का नाम पूछा जाता है, तो देवकी नंदन, देवकी प्राण, देवकी सुतः, ये सब कहा जाता है। तो देवकी नंदनाय च, देवकी को सुख देने वाले आपको मैं प्रणाम कर रही हूं, बहुत बड़े भाग्य का वर्णन कर रही हूं। अच्छा, इससे भी उत्कृष्ट, उनको याद है कि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, वसुदेव जी के पुत्र बने, लेकिन इनकी बाल लीला का सुख तो लिया नंद महाराज और जशोदा जी। जेल से जन्म हुआ चले गया, जो बचपन में बच्चों से सुख मिलता है माता पिता को, वह सुख देवकी और वसुदेव को नहीं मिला। वह कुमार अवस्था का सुख, कुमार अवस्था की गई लीला का आनंद तो लिया नंद बाबा ने और मां जशोदा ने, तो उसका स्मरण करके कह रही है, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमार, हे नंद महाराज के कुमार, कुमार माने बेटा, हे वसुदेव जी के पुत्र आपको नमस्कार करती हूं, और हे नंद गोप के कुमार मैं आपको नमस्कार करती हूं। तो निश्चित हम लोग देखते हैं कि इतना आनंद प्राप्त किया नंद बाबा ने और जशोदा ने कि परीक्षित महाराज ने पूछ दिया सुखदेव गोस्वामी से कि इन दोनों ने क्या तप किया था कि जो सुख वसुदेव जी और देवकी नहीं ले पाए वह सुख इनको मिला। तब सुखदेव गोस्वामी जी उनके पूर्व जन्म की बात कहे कि नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी धरा थी, ये दोनों जशोदा और नंद के रूप में हुए। वास्तविक बात थी कि जशोदा और नंद महाराज ये भगवान के नित्य माता पिता है, लेकिन वे जब आए तो उनके भीतर द्रोण और धरा भी आए थे, वे बाल लीला का आनंद लिए, कुमार अवस्था का। कई तरह की लीलाएं हैं, पूरा पूर्वार्ध लीला भरी हुई है दशम स्कंध। और गोविंदाय नमो नमः, गोविंद शब्द द्वारा श्री गोपी जनों के भाग्य की संकेत कर रहे हैं। गोविंद नाम पड़ा जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, इंद्र ने यह नाम दिया जो गौओं के रक्षक बने। इंद्र ने तो गौओं का वध करना चाहा वर्षा करके, लेकिन गोविंद ने रक्षा किया, कृष्ण ने रक्षा किया, इसलिए भगवान इंद्र के मुख से गोविंद शब्द निकला, उन्होंने गोविंद नाम दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की किशोर अवस्था की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को यह गोविंद नाम सूचित कर रहा है। कुमार अवस्था के बाद गोविंदाय नमः नमः। तो हे गोपीजन वल्लभ, हे गोपियों को सुख देने वाले, आपको मैं नमस्कार करती हूँ और आपके देह को, आपके श्री विग्रह को मैं देखती हूँ तो सब जगह केवल कमल कमल ही है, कमल कमल है। ऐसे नाभि से चालू करती हूँ, नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज अंग्रये। आपका नाभि कमल के समान सुंदर है, जैसे कमल की पंखुड़ियों में क्या कहते मोर होता है, घेर होता है, उसी प्रकार की भगवान की नाभि है। और सौंदर्य और आकार दोनों दृष्टि से कह रही कमल के समान नाभि, अथवा उनको यह याद पड़ रही है कि कमलम नाभव जस्य, जिनके नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से सारा विश्व उत्पन्न हुआ। भगवान के नाभि को देख करके कुंती को यह स्मरण आ रहा है कि यही वह नाभि है जहां से लोकात्मक कमल का जन्म हुआ और जिस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, यह इसको कहते हैं स्मरण। भगवान के एक अंग को देख करके उनके लीला का स्मरण होता है। और सौंदर्य की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से तो है ही कमल। भगवान का पूर्ण शरीर एक कमल है और उसी कमल में हजारों कमल खिले हुए, और उनका सारा शरीर ही एक कमल जैसा सुगंधित शीतल और सुंदर, उसमें भी मुख कमल, अधर कमल, नयन कमल, चरण कमल, नाभि कमल, हस्त कमल, पद कमल, कई कई कमल, कमल कमल, पंकज पंकज पंकज, नमः पंकज मालिने। इसे यह ध्वनित होता है कि उस समय भगवान कमल की माला पहने थे, जिस समय द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए थे तो विदाई के समय में उन्हें नवीन कमल की माला पहनाई गई थी। तो उसको देख करके कहती हैं, कमल मालिने नमः, हे कमल माली आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कमल माली मतलब कमल की माला पहने हुए, अथवा जिनके शरीर में कमल श्रेणी है, माला है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। नक्ष सिक तक केवल कमल भरा हुआ है। और नमः पंकज नेत्राय, नेत्र तो निश्चित ही कमल के सौंदर्य को ही फीका करने वाले। नमस्ते पंकज अंग्रये, चरण में अंत में नमस्कार करने। यह प्रश्न होता है कि कुंती महारानी नाभि से क्यों चालू कर रही हैं? प्रणाम तो चरण में किया जाता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका समाधान किए हैं। वे कहते हैं कि कुंती महारानी का पोजीशन देवकी के समान है, इसीलिए प्रणाम तो कर रही है लेकिन शुरू में यदि ये चरण की तरफ प्रणाम करते तो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऐसे कह ले प्रणाम लेकिन चरण छूने लगे माँ होकर के तो वो डूब जाते संकोच में, और उनकी लीला के अनुसार बिल्कुल उचित नहीं था, है ना? कोई बड़ा व्यक्ति संबंध में चरण छुए तो ठीक नहीं। इसीलिए कुंती महारानी भगवान के इस भाव को समझ करके और तब नाभि से चालू, बीच से चालू की। नमः पंकज नाभाया, नाभि कह करके फिर गले की तरफ देखती हैं तो माला दिखाई पड़ती है, तो फिर कहते हैं नमः पंकज मालिने, फिर नेत्र पर जाकर के नमः पंकज नेत्राय, लेकिन जी नहीं माना अंत में नमः पंकज अंग्रये, आपके चरण कमलों में प्रणाम करती। यह है स्वर्ग का उन्मेष। जीव चाहे कुछ भी हो, चाहे वो नंद बाबा हो, चाहे जसोदा जी हो या राधा रानी कोई हो, अंततः सभी दास हैं कृष्ण।
राधा रानी कई बार कहती मैं कृष्ण की दासी हूं और है वास्तव में कृष्ण शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। तो अंततः कृष्ण के चरणों का ही भरोसा है। जैसे कृष्ण चरण मतलब पूरा कृष्ण, लेकिन भक्तों का बहुत स्नेह भगवान के चरणों से होता है। किसी भी समय, चाहे विदा का समय हो, मिलन का समय हो, बड़े बड़े प्रेमी भक्त भगवान के रो देते हैं, कहते हैं हम तो आपके चरणों के दास, चरण में अंतिम विनय कर रहे हैं, प्रार्थना है, प्रणाम कर रहे हैं, नमः पंकजांग्रे। और इसके बाद अब देवकी से और अपने से तुलना कर रही है, देवकी के साथ कृष्ण का क्या व्यवहार है और मेरे साथ क्या व्यवहार, यही कह रही है कि आप मुझे देवकी से भी अधिक मानते हैं। महारानी कुंती ने कहा है, इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजंग्रये। जथा हृषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा, विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात्, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधे नेक महारथाश्रतो, द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः, विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत्स्यात्, अपुनर्भवदर्शना, जन्मै स्वर्जश्रुता श्रीभिः, एधमान मदह पुमान, नैवार्हत्यभिधातु वै, त्वामकिंचन गोचरम्, नमो किंचन वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्तये, आत्मारामाय शांताय, कैवल्यपतये नमः।
ज्ञान भक्त्यो रसक्यत्वम् उक्त्वा पुनः केवलं नमस्करोति।
ज्ञान और भक्ति में अपनी असमर्थता कहती हुई कुंती महारानी पुनः केवल प्रणाम कर रही हैं। कृष्ण आपको प्रणाम है, वासुदेव आपको प्रणाम है, देवकी नंदन आपको प्रणाम है, नंद गोप कुमार आपको प्रणाम है, गोविंद आपको प्रणाम है, पंकज नाभ आपको प्रणाम है, पंकज माली आपको प्रणाम है, पंकज नेत्र आपको प्रणाम है और पंकजांघ्री आपको प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण के अंगों पर देखती हुई कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। और अब तत्कृतोपकारान अनुस्मरति, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए उपकारों का स्मरण करना प्रारंभ करती है।
यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् मातृतो अपि मयि अधिकः।
मेरे साथ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इस सिद्धांत को, इस विचार को व्यक्त कर रही है। देवकी कंसेन रुद्धा, अति चिरम रुद्धा, देवकी कंस के द्वारा कारागृह में अवरुद्ध की गई थी बहुत काल तक, अति चिरम, और बहुत काल तक वह शोक में डूबी रही। देवकी के शोक के कई कारण थे। एक तो वह पति के साथ, वसुदेव जी के साथ कारागृह में थी, और कारागृह में भी उसके होने वाले पुत्रों का वध कर दिया गया। 6 पुत्रों को कंस ने मारा और 7वें पुत्र का पता नहीं चला, वो गर्भ से ही अदृश्य हो गया। योग माया ने उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु माता देवकी को इसका पता नहीं था कि मेरा बच्चा मेरे गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चला गया। यदि यह पता होता तो देवकी आनंद में होती कि मेरा एक बच्चा बचा हुआ है। और जब 8वां बच्चा हुआ तो उसे भी दूध पिलाने का सौभाग्य माता देवकी को नहीं मिला। आज का जन्म हुआ, अभी का बच्चा दूर हो गया, लेकिन देवकी के लिए थोड़ा सा आश्वासन था कि मेरी बहन की बच्ची हुई थी तो उसके स्तनों में दूध आए ही, तो वह मेरा दूध ना पीकर जसोदा का दूध पिएगा। फिर भी पुत्र के बिना इधर कारागृह में जीवन बीत रहा था, तो सब तरह से दुख ही दुख था देवकी के लिए। कुंती महारानी अपनी तुलना देवकी के साथ कर रही है। इस संसार में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने समकक्ष लोगों के साथ अपना मिलान करके देखता है। कुंती एक स्त्री है और भगवान की बुआ है, तो वह अपने विषय में विचार कर रहे हैं। और कृष्ण का कई स्त्रियों से संबंध है, तो जैसे देव की माँ है, रोहिणी भी उनकी माँ है, श्री बलराम जी की माँ, और भगवान श्री कृष्ण की 5 बुआ हैं, जिसमें से एक कुंती है। तो स्वाभाविक ही स्मरण आ रहा है कि कृष्ण हमारे साथ थे
कितना प्रेम करते हैं। कुंती महारानी इस निष्कर्ष पर आती हैं कि अपनी माता से भी, जिसके उदर में कृष्ण रहे, उससे भी बढ़ करके मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, तो उसी की याद कर रही हैं। एक बार कहती हैं कि हे ऋषिकेश, कारागृह में अति दीर्घ काल तक अवरुद्ध देवकी की जैसे आपने रक्षा किया उसी तरह से मेरी किया, लेकिन इसमें काकवा ध्वनि छिपा हुआ, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में काकवा ध्वनि है, क्या छिपा हुआ है, क्या आप मेरी रक्षा उसी तरह से किए जैसे देवकी की? नहीं, देवकी से अधिक मेरी रक्षा किए, यह अर्थ है। क्यों? क्योंकि देवकी अति चिरम रुद्धा, बहुत वर्षों तक कारागृह में अवरुद्ध रहे, और इस कारण से सुचार पिता शोक में डूबी रहती थी सर्वदा, बहुत शोक में रही देवकी। और कौन डाला था कारागृह में? अपना भाई कंसेन, कंस डाला था, और उसके बच्चों को मारता गया। तो आपने देवकी की रक्षा केवल एक बार किया, एक बार, और बहुत काल के बाद, अति चिरम सुचार पिता। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और वे चले गए ब्रज में, ब्रज में गोचारण करते थे, रासलीला करते थे, लेकिन देवकी उतने काल तक दुख में थी। कुंती कभी भी इतने समय तक दुख नहीं भोगी, दुख आते थे लेकिन वे दो चार मिनट में ही समाप्त हो जाते थे, और एक बार नहीं हजारों बार दुख आए और प्रत्येक बार जल्दी जल्दी समाप्त होने। मुहूर्त विपद गणात, कुंती महारानी कहती हैं कि आप विपद गणात, विपद के समूह से मेरी रक्षा किए। बारंबार विपत्तियां आई और अति शीघ्र आपने रक्षा कर दिया। तो आप जिस माता के गर्भ से जन्म लिए हैं उसके दुख को आप इतना जल्दी दूर नहीं कर पाए, और अभी केवल एक बार किए। जो दूसरी विशेषता है कि वह सुचार पिता रही, सुचार पिता मतलब शोक से व्याप्त रही, मैं कभी भी शोक में नहीं रही। यदि मुझ पर बहुत विपत्ति आई लेकिन विपद हारी आपने इतना शीघ्र मेरी विपत्ति दूर कर दिया कि मुझे कभी कोई शोक नहीं हुआ। और दूसरी विशेषता है कि सहात्मजा, आत्मजय सहिता, आपने मेरी रक्षा की और मेरे पुत्रों के साथ रक्षा की। देवकी की आपने एक बार रक्षा की लेकिन उसके पुत्रों की रक्षा आपने नहीं किया, इससे आपका बहुत अधिक स्नेह मेरे प्रति प्रकट होता है। कुंती महारानी के पुत्रों पर बहुत विपत्ति आई लेकिन उनका बाल बंका नहीं हुआ, और देवकी के पुत्र कारागृह में ही मारे जा रहे थे। क्या भगवान उन्हें नहीं बचा सकते थे? कुंती जी विचार कर रही हैं कि यह अवश्य ही सिद्ध कर रहा है कि आपका प्रेम मुझ पर अधिक है। यह है एक भक्त का अनुभव, भगवान के हृदय में बसने वाले स्नेह को वह समझ रही है। देवकी और कुंती दोनों दुख में डाली गई, और दोनों को दुख में डालने वाले अपने परिवार के लोग थे, बाहरी आदमी नहीं था। कुंती का विवाह हस्तिनापुर में हुआ था, और जब अपने पति का देहांत हो गया तो अपना परिवार ही कुंती के लिए सबसे भारी दुखद हो गया। अपना परिवार मतलब अपने जेठ थे धृतराष्ट्र महाराज और उनके सौ पुत्र थे, ये सब कुंती के विरुद्ध थे, कुंती के पुत्रों का वध करना चाहते थे किसी भी उपाय से, जैसे भी हो सके पांडवों का नाम निशान मिटाना चाहते थे इस धरती से। और अनेक विपत्ति डाले, अनेक संकट डाले, लेकिन सब में भगवान ने बचा लिया। इस यह जगत ऐसा है कि यहां किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह मेरा बंधु है, यह मेरा भाई है, यह है वह है। थोड़ा सा स्वार्थ टकराया तो कभी भी महासंकट में डाल सकता है। विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये मेरे परिवार का है, मेरे संघ का है। यहां थोड़ी थोड़ी बात के लिए आदमी बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। और देवकी ने क्या अपराध किया था, अथवा कुंती ने क्या अपराध किया था? कुछ भी नहीं। कुंती का बस यही अपराध था कि वह सम्राट की पत्नी थी और इसके पुत्र राज्य के अधिकारी थे, बस। यदि वे जीवित रहते तो सब जगह प्रचार होता कि ये सम्राट के पुत्र हैं, इसलिए इनको राज्य देना पड़ेगा, अतः इन्हें खत्म कर दो जिससे हमें राज्य न देना पड़े। तो कुंती ने धर्म पूर्वक अपने पति की आज्ञा से पुत्र प्राप्त किया और जब वह पुत्रों के साथ वन से लौटी, ऋषि आश्रम से लौटी, जिस समय पांडु महाराज का देहांत हो गया तो वह अपने पुत्रों को लेकर के लौटी हस्तिनापुर, तो कोई नहीं स्वीकार कर रहा था कि ये पांडु के पुत्र हैं, क्योंकि सबको पता था कि इसको साप है, पांडु को साप था, उसको पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता था। ये कौरव पक्ष के लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, ये पांडु महाराज के पुत्र नहीं है, और खोलम खोला इस अबला का उपहास करते थे कि तुम्हारा अवैध संबंध किसी से है, इससे इतने पुत्र प्राप्त हुए, ये संभव ही नहीं हो सकता है, ये कैसे पांडु के पुत्र है। तो वहां पर वेदव्यास देव ने साक्षी दिया और बहुत से ऋषियों ने आकर के कहा, धृतराष्ट्र को और सबको समझाया कि ये महाराज पांडु के पुत्र है, तब वे लोग स्वीकार किए, स्वीकार नहीं कर रहे थे, जस स्वीकार कर लिए लेकिन अब बहुत खड़जंत चालू किए उनको मारने के लिए। तो एक तो बेचारी विधवा हो गई, अपने पति के विरह का दुख भोग रही थी, सम्राट की पत्नी होकर, और बच्चों पर प्रतिदिन विपत्ति थी, कुछ भी ठीक नहीं था, कब कहां मारा जाएगा, क्या उपाय किया जाएगा, और पूरी राज शक्ति विरुद्ध थी कुंती के, लेकिन भगवान ने सब जगह बचाया। तो अपना परिवार बैरी था कुंती के लिए, और देवकी के लिए अपना भाई बैरी था। देखिए, ये दोनों स्त्रियां संकट में डाली गई, एक अपने नैहर के एक व्यक्ति द्वारा, कंस द्वारा संकट में डाली गई। और देवकी का क्या अपराध था? देवकी का ये कहीं बहुत बड़ा अपराध था कि उसके गर्भ से भगवान का अवतार होने वाला था, बस यही अपराध। अगर उसके गर्भ से कोई खल जन्म लेता, दुष्ट आता, तो कंस को इससे कोई मतलब नहीं था, देवकी को जीवित छोड़ देता, भगवान इसके गर्भ से आ रहा है इसलिए इसको मारो। और किस दिन देवकी विपत में डाली गई? जिस दिन उसका विवाह हुआ, कुंती का जिस दिन विवाह हुआ उस दिन वो संकट में नहीं डाली गई, वो बहुत काल तक राजर्षि की पत्नी रही, सुख से रही, लेकिन देवकी एक दिन भी ससुराल में नहीं अपने घर गई विवाह होने के बाद, उसे राजपथ से ही कारागृह में डाल दिया गया। और गई थी एक साल के लिए, कंस छोड़ दिया था, लेकिन जब पहला पुत्र हुआ तो उस समय कंस पुत्र का भी वध किया और देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया उस समय से। लेकिन विवाह के प्रथम दिन ही कंस उसकी चोटी पकड़ करके और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के उसका गला काटना चाहता था, तो वसुदेव जी की बुद्धि थी, उन्होंने किसी तरह से उसको राजी किया, समझाया, तब वह माना। परंतु उस समय तो मान गया, परंतु बाद में देवकी को और वसुदेव को दोनों को कारागृह में बंद किया, तो यहाँ कुंती महारानी कह रही है कंसे न अति चिरम रुद्धा, रुद्धा अवरुद्धा हो बहुत काल तक शोक में डूबी रही। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इस संसार में भरोसा नहीं करना चाहिए, अरे हमारा परिवार है बहुत अच्छा है हमको सहारा दे रहा है, कृष्ण के अलावा कोई अपना नहीं है वास्तव में, कभी भी कोई विरुद्ध हो सकता है। और देखा गया है कि इस संसार में भाई से बढ़ करके कोई दूसरा दुश्मन नहीं होता है, और भाई जैसा ऐसे मित्र भी नहीं होता है। भाई अनुकूल हो तो बहुत बड़ा मित्र है, और नहीं प्रतिकूल हुआ तो सबसे बड़ा दाहक अग्नि वही हो जाता है। ये सबका देखा हुआ विषय, बड़े बड़े जो दुख हुए हमें अपने स्वजनों से हुए हैं, देवकी को दुख हुआ अपने भाई से, कोई बेचारी अपराध नहीं की थी, कोई पहले से अपराध नहीं था, अगर अपराध होता तो कंस रथ नहीं हाँकता, वो सारथी को हटाकर ड्राइवर को हटा करके स्नेह बस रथ हाँक रहा था, लेकिन जब ही सुना कि इसके गर्भ से विष्णु आएगा बस स्नेह समाप्त हो गया। तो इस तरह से देवकी भी दुख में डाली गई थी और कुंती भी दुख में डाली गई थी। कुंती विचार करके देख रही है कि मेरी भाभी कितना दुख में डाली गई, कृष्ण की जननी कृष्ण की माता कितना काल तक दुखनी रही, लेकिन मुझे कृष्ण दुख का मुख नहीं दिखाए, मेरी विपत्ति हमेशा जल्दी जल्दी दूर करते रहे। अति चिरम रुद्ध तो विमोचिता अहम, मैं रक्षिता हुई, मुझको छुड़ाए विपत्ति से सहात्मजा, और त्वयैव नाथेन आपने मुझे मुक्त किया विपत्तियों से, दुख से छुड़ाया जल्दी जल्दी। मुहु और विपद गणात, हजारों विपत्तियों से और मुहु जल्दी जल्दी, हम मुंह का अर्थ शीघ्र शीघ्र, बारंबार विपत्तियां आई और आपने अति शीघ्र मुक्त कर दिया, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण, बहुत भारी विपत्ति थी अपने स्वजन पर, कुल वधु का अपमान हो रहा था उस असत सभा में, जिसे कुंती महारानी यहां असत सभा कहती है, दुष्टों की सभा, लेकिन क्षण भर में कृष्ण ने रक्षा कर लिया। करोड़ों गज करोड़ों मीटर साड़ी बढ़ गई, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक कर गिर गया साड़ी खींचते खींचते, लेकिन साड़ी का ओर छोर नहीं मिला, तो भगवान ने इस तरह रक्षा कर लिया। उसकी वे आगे याद कर रही, क्यों रक्षा किया, कथा बोल रही है, क्योंकि मैं अनाथिनी थी, मेरा रक्षक कोई नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि देवकी के समान मेरा आप में प्रेम है, देवकी का आप में जितना प्रेम है उसके सामने करोड़वे अंश भी मेरा प्रेम आप में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एकमात्र योग्यता यह थी कि मैं दीन थी, और आप संबंध देख रहे थे कि मेरी बुआ अनाथनी है विधवा है, कुछ भी हो देवकी दुख में थी लेकिन उसके पति उसके साथ थे, और उसके और स्वजन उसके विरुद्ध नहीं थे, केवल एक व्यक्ति विरुद्ध था, और हमारे तो सभी विरुद्ध थे, आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं था। देवकी के और लोग भी थे, जैसे अक्रूर जी थे, अक्रूर जी सर्वदा वसुदेव और देवकी की रक्षा के लिए बुद्धि लगाया करते थे, कई ऐसे अवसर आए कि कंस को उन्होंने समझा करके राजी कर लिया, यद्यपि और यादव सब भाग गए थे अपने संबंधी कंस से बहुत भयभीत थे, लेकिन सब देवकी का हित चाहते थे और कोई विरोध नहीं था, कुंती का सारा समाज विरोधी था, 100 भाई दुर्योधन में विरोधी थे, उनके संबंधी विरोधी थे, और उधर केवल एक दो व्यक्ति थे जो हितैषी थे, जैसे विदुर जी, भीष्म पितामह आदि हितैषी थे, लेकिन बाहर से हितैषिता नहीं कर सकते थे, बल्कि दुर्योधन की बनाई हुई योजनाओं के साथ उन्हें चलना पड़ता था। महाभारत में कथा है कि जब पांडव अज्ञात वास कर रहे थे विराट नगर में, तो उनका पता लगाने के लिए और उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास देने के लिए कौरव लोग खोज रहे थे उनको, तो उसमें भीष्म पितामह भी आए थे, द्रोणाचार्य भी आए थे। इस तरह से लोग करते थे, तो वास्तविक हितैषी एक ही व्यक्ति थे, विदुर जी। बहुत बुद्धिमानी पूर्वक वे पांडवों की सहायता कर रहे थे। इसी से महाराज युधिष्ठिर याद करते हैं अपने चाचा की, विदुर जी की, तो कहते हैं कि चाचा जी, आपने हम लोगों के वैसे ही रक्षा किया था जैसे पक्षी पंख की छाया करके हमारी रक्षा, अपने अंडे की रक्षा करते हैं। तो विदुर जी भगवान कृष्ण के भक्त थे, और विदुर जी को भगवान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इनकी रक्षा करते रहिएगा। तो विदुर जी थे और भगवान थे। कुंती समझ रही है कि मैं अनाथनी थी, मेरे नाथ केवल आप थे। प्रायः स्त्री के लिए पति, पति के बदले नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस स्त्री के पति जीवित हैं उसको सनाथ कहते हैं, सनाथनी है, लेकिन जिसका पति नहीं है वो अनाथ है। कुंती ने कभी नहीं फील किया, कभी नहीं अनुभव किया कि मैं अनाथ, क्योंकि हमारे वास्तविक नाथ श्री कृष्ण, श्रीनाथ जी वास्तविक नाथ, वो समझ गई थी जीवन में इस सत्य को, वो जान चुकी थी कि कृष्ण हमारे नाथ है, हमारे सब कुछ। तो त्वया एव नाथ है ना, त्वया एव, एव शब्द यह बता रहा है कि मेरे रक्षक आपके अतिरिक्त और कोई नहीं था। तो शायद आपने देवकी की रक्षा इसलिए नहीं किया कि देवकी के नाथ उसके साथ थे, देवकी का परिवार उसके फेवर में था, साथ में था, लेकिन मैं सब तरह से दुखनी थी, अनाथनी थी, दीना थी। हे दीन बंधु, आपने इस दीन बंधुता के कारण मुझसे प्रेम किया और मुझे बचाया, मुझमें कोई गुण नहीं है, मैं देवकी के समान सौभाग्यवती नहीं हूं। जिसके उदर में आप आए, जिसके छाती का दूध पिए, वह स्त्री निश्चित ही हमसे कोटि गुना अधिक भाग्यवती है, लेकिन फिर भी मैं अनाथनी थी, अतः आपने मेरे साथ स्नेह किया। यह है भगवान कृष्ण के साथ भक्तों का संबंध और उसके अनुसार अनुभव। प्रत्येक भक्त अप्राकृत जगत में यही अनुभव करता है कि भगवान सबसे अधिक स्नेह मेरे साथ करते हैं, यह अनुभव होता है। कुंती महारानी स्पष्ट अपने पुत्रों के साथ कह रही हैं कि आप अपने मां से भी अधिक स्नेह मुझसे किए, और वास्तव में इसमें संदेह नहीं है। यदि लीलाओं को पढ़ करके हम देखें तो कुंती के साथ जितना भगवान ने प्रेम किया उतना देवकी से नहीं किया, परंतु देवकी के गर्भ में वे आए, अब इससे बढ़ करके सौभाग्यवती नारी दूसरी देवकी से हो नहीं सकती। आज भी देवकी नंदन कहा जाता है, देवकी पुत्र कहा जाता है कृष्ण को, पर और लीलाओं में विचार कीजिए तो जितना वे कुंती से स्नेह किए उतना देवकी से नहीं। जानते थे कि उसका रक्षक कोई नहीं, मैं हूं, और इसीलिए बारंबार रक्षा की। तो विपत्तियों को गिना रही हैं। विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्च स्म हरेभिरक्षितः। विषात्, विषात मतलब विष से, भीम को विष दिया गया था। पांचों पांडवों में भीमसेन बहुत बलवान थे, तो सभी कौरव जलते थे उनसे। तो एक बार कौरवों ने आपस में मंत्रणा करके भीम को मारने का उपाय किया, तो वे लोग कहे कि चले हम लोग गंगा जी के तट पर और वहां प्रीति भोज करेंगे। रोज तो अपने भवन में खाते ही हैं, अब थोड़ा वन में चलें गंगा जी के किनारे प्रीति भोज पिकनिक करने के लिए गए। तो कपट से ये लोग वहां पर हलाहल विष डाले एक भोजन में, और योजना थी कि भीम को खिलाया जाएगा। तो वे लोग भीम को खाने के लिए दिए और भीम खाए, जब ही वे भोजन किए तब ही बिल्कुल विशुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए। और अंत में उनको मरा हुआ समझकर कौरव उन्हें गंगा जी में फेंक करके और घर चले आए। और अन्य जो चार भाई थे भीमसेन के, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग बहुत विलाप करने लगे। और यह बहाना किया गया कि भीमसेन डूब गए, पानी में डूब गए, तैरने में थक करके डूब गए। वास्तव में विष के कारण डूबे, लेकिन इधर हल्ला किया गया कि वो डूब गए पानी में, गंगा जी में डूब गए। पूरा जो अपने संबंधी हितैषी थे वे लोग रो रहे थे, और जो दुश्मन थे वे भी नकली रूप से रो रहे थे, वे भी हाहाकार कर रहे थे झूठ मूठ। धृतराष्ट्र को तो बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन वो भी विलाप कर रहा था, हाय हाय भीम मर गया मर गया मर। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, भीम सेन गंगा जी के दह में डूबे, और डूबे डूबे वे पाताल लोक चले गए, सर्पों के लोक में चले गए। तो वहां सर्पों ने उनको काटना चालू किया चारों तरफ से। विषस्य विषमौषधम, विष की दवा विष है, वे बिल्कुल बेहोश हो गए थे। जब सर्पों ने काटना चालू किया तो उनको थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी, और चेतना आई तो सांपों को पकड़ करके ही सांपों को मारने लगे, बलवान थे ही। एक सांप को पकड़ करके ठा दूसरे सांपों को मारने लगे, वे सब भागे। और जाकर के सर्पराज वासुकी जिसे कहे कि एक अद्भुत मनुष्य आया है, अद्भुत मनुष्य की जब हम लोग उसको काटते हैं डसते हैं तो वो और अधिक जी गया, पहले बेहोश था और जब हम लोग काटे तो जी गया, और सभी सर्पों को मार रहा है, उसके आगे हम लोगों की कोई शक्ति काम नहीं कर रही। तो वासुकी जी बलवान सर्पों को भेजे कि जाओ उसको पकड़ कर लाओ। तो कुछ बलवान सर्प गए और अपने देह में लपेट करके भीमसेन को लाए, हाजिर किए वासुकी जी सर्पराज। तो वासुकी जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो भीमसेन ने बताया कि मैं महाराज पांडु का दूसरा पुत्र हूं, मेरी मां कुंती। तो संजोग बस वासुकी जी के साथ ही भीमसेन के नाना जी रहते थे। भीमसेन के नाना जी सूरसेन थे, वसुदेव जी के पिताजी, और उनके नाना जी रहते थे वहां पाताल लोक में। उन्होंने जब सुना तो उनका बहुत स्नेह उमड़ा कि हमारे नाती का नाती आया है। तो उन्होंने वासुकी जी से कहा कि अरे ये तो हमारा संबंधी है, इसका स्वागत होना चाहिए। तो वासुकी जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या स्वागत होना चाहिए? तो उस लोक में, नाग लोक में अमृत रहता है जिसको पीने से आदमी का बहुत बड़ा बल बढ़ जाता है। भीमसेन के नाना जी ने कहा कि इसको रस पिला दिया जाए बल बढ़ाने के लिए, अमृत। तब वासुकी जी ने कहा ठीक है। तो पहले भीमसेन को एक आध लोटा पीने को दिया गया। तो कहा गया क्या और पियोगे? तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत पी सकता। तब एक कुंड में, एक हौदा में रखा हुआ रस उनको पिलाया गया, एक कुंड का, जिसको पीने से एक हजार हाथी का बल बढ़ता था एक हौदा को पीने से। तो इस तरह से भीमसेन 8 हौदा का रस पी गए, 8000 हाथी का बल बढ़ गया, और 2000 हाथी का बल तो इनमें पहले से ही था। तो इस तरह से 10000 हाथी का बल बढ़ गया, और शरीर सोना की तरह चमकने लगा, पहले की अपेक्षा और गठीला, तेजस्वी, सुंदर हो गया।
यह देखिए कृष्ण की इच्छा है। और इसके बाद सोने के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया, रत्नों से, और वासुकी जी ने व्यवस्था किया कि इसको हस्तिनापुर पहुंचा दो। तो गंगा जी की जिस धारा से डूबे थे उसी धारा से उनको ऊपर लाया गया और ला करके वहीं निकले, दह में से जहां डूबे थे वहीं से निकले और घूम करके घर आ गए। सब लोग देखे तो कुछ लोग तो बहुत आनंदित हुए, अरे भीमसेन आ गए डूब करके भी आ गए। और वो लोग देखे तो देवताओं से भी अधिक सुंदर शरीर भीमसेन का हो गया। तो कौरव तो मर गए कि ये क्या हुआ, ये डूबा था मरा था कैसे आ गया। तो कुंती महारानी याद कर रही है, विषाद आपने उस भयंकर हलाहल विष से रक्षा किया, विषाद महाग्नि और महायग्नि से, लक्षा भवन की आग से आपने रक्षा किया। एक बार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के कहने से एक ऐसे भवन का निर्माण कराया जो लाक्षा से बना हुआ था, जिसको अग्नि का रूप देने में एक दिया सलाई मारना पर्याप्त था। एक जगह आग पकड़ती तो भह से सारा राजभवन आग की चपेट में आ जाता। बहुत दुर्भिसंधि से कपट से वो भवन बनाया गया था, लेकिन कौरव इतने अज्ञ थे कि उस भवन को बनवाने में वे विदुर जी से भी सलाह लिए थे। विदुर जी को जिम्मेवारी दे दिए थे कि आप इस भवन को बनवाइए। वे नहीं समझते थे कि विदुर जी कितना पक्षपाती हैं पांडवों के। तो भवन बनाया गया, लेकिन उस भवन के हाल से एक सुरंग बनवाया विदुर जी ने, सुरंग टनल जो जंगल में निकलता था उसका सिरा उन्होंने बनवाया दिया। वो जानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वो सब समझते थे कि ये क्यों भवन बनाया जा रहा। तो राजभवन बनाया गया, जैसे हस्तिनापुर का राजभवन था उतना ही सुंदर भवन बनाया गया। और एक दिन धृतराष्ट्र ने कहा महाराज युधिष्ठिर से, बेटा देखो तुम लोग भी राजा के पुत्र हो और दुर्योधन आदि तो अंध राजा के पुत्र हैं ही, तो तुम लोग इतना कंजस्टेड स्थान में रह रहे वो ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत सुंदर राजभवन में बनवा दिया हूं, वहां फ्री जीवन बिताओ, वहां आनंद से रहो। यह जानता हमारे 100 पुत्र ऐसे ही हैं और तुम लोग राजा के बेटा हो इसलिए यहां दुख भोग रहे हो, वहां बहुत सुंदर भवन बना दिया गया है वहां जाकर के रहो। और आशा यह था कि जिस किसी दिन असावधान होकर सोए रहेंगे बस आग लगा दी जाएगी, जलकर राख हो जाएगा, यही उद्देश्य। तुम्हारे युधिष्ठिर का स्वभाव था कि वे बड़ों की आज्ञा कभी नहीं टालते थे,